नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एकीकृत केंद्रीय सचिवालय परिसर के कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और शासन को चुस्त और अधिक सक्षम बनाना है। कर्तव्य भवन 3 व्यापक बदलाव किए गए सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। ये लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर में स्थित आधुनिक 7 मंजिला कार्यालय परिसर है, जिसके 2 बेसमेंट तल हैं। इसमें गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कृषि विज्ञान क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत और खाद्य सुरक्षा के अग्रदूत प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर श्री स्वामीनाथन के सम्मान में भारत सरकार द्वारा जारी स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत फिलीपींस साझेदारी को दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा है कि यह क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का आधार है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमू अल्देज मार्कोस जूनियर का भारत की पहली राजकीय यात्रा पर स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग, बढ़ता व्यापार और वाणिज्य, समुद्री क्षेत्रों सहित मजबूत रक्षा और सुरक्षा सहयोग तथा विकास साझेदारी शामिल है।
हमारी साझेदारी न केवल हमारे दोनों देशों के लोगों के लिए लाभदायक है, बल्कि ये हमारे आसपास के क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का आधार भी है। फिलीपींस भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन और इंडो पैसिफिक संबंधी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है।
भारत और फिलीपींस ने उन्नत रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग को दिशा देने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना को स्वीकृति दी है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमू अल्देज मार्कोस जूनियर की उपस्थिति में लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फिलीपींस अपने संबंधों को महत्वपूर्ण साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी नीति देश में सतत सहकारी विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की पहलों के संबंध में कल नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली में कल बादल फटने से खीरगंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियां बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अब तक 130 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मौद्रिक नीति समिति के प्रस्ताव की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक ने फरवरी से अब तक 3 बार रेपो रेट में 100 आधार अंकों की कटौती की है। इसे देखते हुए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आज की घोषणा में यथास्थिति बनी रहेगी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अगले संसदीय चुनाव फरवरी 2026 में होंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार की ओर से वे मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखेंगे, जिसमें चुनाव आयुक्त से अगले रमजान से पहले फरवरी 2026 में राष्ट्रीय चुनाव कराने के लिए कहेंगे। प्रोफेसर यूनिस ने कहा कि चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और उत्सव के माहौल में कराने के लिए उनकी सरकार हर तरह का सहयोग और समर्थन प्रदान करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।